कि तनाव का शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है और तनाव मुक्त जीवन के सुनहरे सिद्धांत क्या है। आजकल की मेजर प्रॉब्लम ज्वलन समस्या कौन सी है? नींद नहीं आना, ठीक है ना? तो इतनी सुंदर जिंदगी आपकी, नींद जो आपकी सबसे पर्सनल चीज है, उसको ही आप एंजॉय नहीं कर पाते? नींद की गोलियां खा खा कर सोना, ये भी कोई जीवन है? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट इज? कैसा जीवन जी रहे हैं आप? तो तनाव का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है और उसके कारण बहुत सी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि आदि। देखिए, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। यहां बताया है कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये दो नसें हैं, तार जो ब्रेन से स्टार्ट होकर बॉडी के सारे पार्ट्स में जाती है। अब रूल ये कहता है कि ये दोनों नर्वस सिस्टम बैलेंस में काम करना चाहिए। अगर ये बैलेंस में है तो हम स्वस्थ हैं, और अगर इसमें इम्बैलेंस होता है तो फिर बीमारियां होती हैं। अब देखें, जब हम तनाव में होते हैं तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट काम करने लगता है, स्पीड इसकी बढ़ जाती है, और देखिए उसके कारण क्या क्या बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, पेप्टिक अल्सर, डायोरिया, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, एसिडिटी और डायबिटीज। तो ये सब बीमारियां क्यों हुई? कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट काम करने लगा। अब हम चलते हैं, हम तनाव के कारण आदि पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कारण तो सबके अपने अपने जीवन में अलग अलग होते हैं। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पार्ट पर आ जाते हैं कि आखिर हम क्या करें कि हम संपूर्ण निश्चिंत खुशनुमा जीवन व्यतीत कर सकें। पर उसके पहले हम ये देखेंगे कि वास्तव में तनाव होता कहाँ है। ये तो पता होना चाहिए ना कि तनाव कहाँ होता है, तभी तो उसको बाहर निकालेंगे। तो तनाव होता है हमारे मन में। अब मन क्या चीज है, कैसे डिफाइन करेंगे? मन हमारे संकल्प करने की शक्ति का नाम है। मन एक ऐसी शक्ति है जो पास्ट में भी जा सकती है और फ्यूचर में भी ट्रेवल कर सकती है। ये शक्ति समय और धन दोनों के बंधन से मुक्त होती है। तो चलिए हम आपको अभी अनुभव कराएंगे कि मन क्या चीज है। आज तक आपने अनेक स्थानों की सैर की होगी, पर आज हम आपको मन की सैर कराएंगे। आपने की कभी मन की सैर? तो चलिए अभी सभी अपनी आंखें बंद कर लें, हम चलते हैं मन की सैर करने। जैसा जैसा हम आपको बोले आप अनुभव करते चलें। चलिए हम चलते हैं मन की सैर की तरफ। आप सर्वप्रथम यहां बैठे बैठे अपने बचपन के दिनों में चले जाएं। खो जाएं बचपन की यादों में। याद करें कैसा था हमारा बचपन। कितने निश्चिंत थे, क्या क्या खेल हम खेलते थे। याद करें बचपन के दिनों को। बचपन की स्मृतियों को सामने लाएं। अब आप अपने जीवन के खुशी के क्षणों को याद करें, जब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली हो। अपने जीवन के खुशी के क्षणों को याद करें। सफलता के क्षणों को याद करें। अब चलिए चलते हैं प्रकृति सौंदर्य के पास, अपने आप को सागर के पास ले जाएं। ले चले सागर के पास। सागर की लहरों को देखते रहें। आहा, जिस तरह सागर की गहराई में शांति है, मेरे मन के सभी व्यर्थ संकल्प शांत हैं। सागर के बीच उगते सूरज को देखें, सागर के बीच उगता सूरज, अब ले चले अपने आप को घने जंगलों में, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हैं, जंगल में दौड़ते हिरण को देखें, नाचते मोर को देखें, पशु पक्षियों की संगीतमय आवाज सुने, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ के बीच झरना, खो जाए प्रकृति सौंदर्य में, आनंद ले प्रकृति सौंदर्य का, अब धीरे धीरे वापस वर्तमान में आ जाएं और आंखें खोल लें। तो पहुंच गए थे सभी, पहुंच गए थे। तो देखा आप सबने कितनी सुंदर चीज है ये मन, जिसके द्वारा एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो जो इतनी सुंदर चीज है उसके लिए हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि हवाई घोड़ा है, चंचल घोड़ा है, कंट्रोल में नहीं आता, इसलिए इसका दमन कर दो। वस्तुतः मन का दमन नहीं किया जा सकता। तनाव क्यों होता है कि मन गलत दिशा में जा रहा है, और तनाव मुक्त जीवन के लिए ये आवश्यक है कि मन को हम सही दिशा में लाएं, मन को मारे नहीं पर मन को सुधारें। देखिए जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन को यही शिक्षा दी है कि अपने मन के मालिक बनो। उसको यही कहा कि हे अर्जुन, यदि तू अपना मन मुझ में स्थित कर देगा तो तू संसार के सारे दुर्ग जीत लेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कि आखिर हम क्या करें कि हम संपूर्ण रूप से निश्चिंत और खुशी का जीवन व्यतीत कर सके। हम आपको यहाँ एक एक करके तनाव मुक्ति के सिद्धांतों पर बताएं। उसके पहले आप शेयर करेंगे कि आज तनाव मुक्ति के लिए लोग क्या क्या करते हैं, बताइए क्या क्या करते हैं। आपको पता हो कि आज तनाव मुक्त जीवन के लिए बड़े बड़े स्ट्रेस टॉयज बन गए हैं। मान लीजिए आप कोई ऑफिस में काम करते हैं और आपके बॉस ने आपको खूब सताया। अब आपकी इच्छा हो रही है कि उसको जाकर एक दूं, तो वो तो कर नहीं सकते, तो लोग अपने बॉसेस के पिक्चर्स पर कील ठोकते हैं। जापान के अंदर कुछ ऑफिसेस में एक रूम बना दिया है और वहां पर लोग अपने बॉसेस का पिक्चर लगाते हैं। हर डिपार्टमेंट के हेड का पिक्चर है, अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस, परचेज, सेल्स। और शाम को जब काम पूरा होता है तो लोग अपने बॉसेस के पिक्चर्स पर कील ठोकते हैं कि किसने किसको कितना दुख दिया। पर आप ही बताइए कि ऐसे कील ठोकने से हमारा तनाव बढ़ेगा या कम होगा? बताइए, बढ़ेगा ना, क्योंकि जो काम बार बार करते हैं वो तो पक्का होता है। तो करना क्या है, मन को ठीक। और देखिए लोग क्या करते हैं। तो अब हम चलते हैं तनाव मुक्त जीवन के सुनहरे सिद्धांत। हम आपको यहाँ एक एक करके प्रिंसिपल्स बताएंगे, पर एक बात आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर केवल सुनने के लक्ष्य से आए हैं या आप सचमुच चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए? क्या लक्ष्य बताइए, क्या लक्ष्य सभी का? परिवर्तन, कुछ अनुभव करना चाहते हैं। एक हमको भाई मिले, बोले बहन जी इतने साल हो गए सुनते सुनते, इतने लोगों का सुन लिया कि बोले सुनते सुनते ही थक गए। तो आप आज फर्स्ट डे है, इसीलिए हम आपको आज से बताते हैं कि केवल इस लक्ष्य से नहीं बैठना कि हमको सुनना है, पर आज से ही ये लक्ष्य आप रखें कि हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ अनुभव करना है। ठीक है, रहेगा सभी का लक्ष्य? जिसका ये लक्ष्य रहेगा हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत अच्छा, तो सबने उठाया। पर अब सचमुच परिवर्तन हो तो उसके लिए जो जो बातें हम आपको बताएं, आज से ही आप उसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तनाव मुक्त जीवन का सुनहरा सिद्धांत, नंबर वन, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन। टेक्निक नंबर वन, पॉजिटिव थिंकिंग। तनाव मुक्त जीवन के लिए आप अपने विचारों को पॉजिटिव ही नहीं पर पॉजिटिव से भी ऊंचा महान बना दें, क्योंकि छोटे विचार वाले व्यक्ति कभी भी तनाव मुक्त नहीं हो सकते। छोटे विचार वाले व्यक्ति को हर छोटी छोटी बात परेशान करती है, और जिसके विचारों में महानता है तो उसे संसार की बड़े से बड़ी परिस्थिति भी हिला नहीं सकती। तो आप अपने विचारों को महान बना दें। कहते हैं जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। हमारे संकल्प से ही हमारा स्वरूप बनता है। देखिए सोचने के तरीके का हम पर क्या प्रभाव होता है, हम आपको उसका एक रियल प्रसिद्ध घटना सुनाते हैं। ये सत्य बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। हम आपको बताते कि सोचने के तरीके का हम पर क्या प्रभाव होता है कि एक बार एक पेशेंट था, कैंसर पेशेंट, और उसको बहुत बड़ी कैंसर की गांठ, लिम्फोमा की गांठ थी गले में। और उसने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इस प्रकार के कैंसर के लिए एक नई दवाई क्रिब्यूसिन नाम के इंजेक्शन निकल गए हैं, इससे कैंसर ठीक हो जाता है। तो वो अपने डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर आप भी मुझे ये क्रिब्यूसिन के इंजेक्शन दीजिए, शायद इससे मैं ठीक हो जाऊं। तो डॉक्टर ने ऐसे ही किया, उसको 5-6 क्रिब्यूसिन के इंजेक्शन दे दिए और उसकी सारी गांठ बर्फ की तरह पिघल गई, पेशेंट ठीक हो गया। अब करीब 5-6 महीने तक वो पेशेंट ठीक रहा। फिर दूसरी बार एक बुक निकलती है अमेरिकन जनरल ऑफ ऑन्कोलॉजी, उसमें उसने पढ़ा दूसरी रिसर्च कि ये जो क्रिब्यूसिन नाम की दवाई है इसके रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, इससे कोई कैंसर वैंसर ठीक नहीं होता। तो जैसे ही उसने पढ़ा उसको दूसरी बार वो गांठ निकल आई, फिर कैंसर हो गया। फिर वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर समझ गए कि ऐसा मैगजीन में पढ़ने के कारण उसकी ऐसी हालत हुई है। तो डॉक्टर ने एक युक्ति रची, उसने कहा कि देख भाई, पहले मैंने तुझे जो इंजेक्शन दिए थे वो शुद्ध इंजेक्शन नहीं थे, और अब मैं तुझे बढ़िया वाली क्वालिटी के इंजेक्शन लगाऊंगा, शुद्ध एकदम, बोले तो फिर ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसको फिर 3-4 क्रिब्यूसिन के इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाए और दूसरी बार उसकी वो गांठ बर्फ की तरह पिघल गई, वो फिर ठीक हो गया। और 1 साल तक वो पेशेंट ठीक रहा। अब तीसरी बार फिर न्यूज़पेपर में एक रिसर्च पब्लिश हुई कि ये जो क्रिब्यूसिन नाम की दवाई है इस पर रिसर्च हो रही है, इसके रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, इससे कोई कैंसर वैंसर ठीक नहीं होता। तो जैसे ही उसने पढ़ा उसको तीसरी बार वो गांठ निकल आई और अंततः उस मरीज की डेथ हो गई। तो देखिए, जैसा जैसा उसने सोचा वैसा वैसा होता गया। जब उसने सोचा कि ये अच्छी दवाई है मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो ठीक हो गया। तो आप बताइए कि जब वो पेशेंट ठीक हुआ था तो किसने उसको ठीक किया, बताइए किसने ठीक किया? उसको ठीक किया उसके शक्तिशाली मन ने। और ये बताइए कि जब शक्तिशाली मन कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकता है, तो क्या शक्तिशाली मन ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, या हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याएं, क्या इनको ठीक नहीं कर सकता? कर सकता है ना। तो मन को शक्तिशाली बनाओ और समस्या भगाओ, ये ब्रह्मा कुमारीज का एक फेमस स्लोगन है। मन को शक्तिशाली बनाओ और समस्या भगाओ। और मन शक्तिशाली बनता है अच्छे संकल्पों से। जिसके पास जितने अच्छे विचार हैं उसका मन उतने ही शक्तिशाली है। देखिए लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, पर क्या पॉजिटिव सोचें ये नहीं पता। और यहाँ पर आपको रोज हम बताएंगे कि आप क्या पॉजिटिव सोचें। कहते हैं कि शुद्ध संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। पर आजकल हमारा थिंकिंग पैटर्न कैसा हो गया है? नेगेटिव। किसी भी सिचुएशन का फर्स्ट रिस्पांस हम कैसे करते हैं? नेगेटिव। प्रैक्टिकल हम चर्चा करें कि मान लीजिए आपको कोई यात्रा पर जाना है, तो यात्रा पर जाने के पहले हम क्या सोच लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई विघ्न ना आ जाए। या मानो आप हॉस्पिटल में गए एक पेशेंट को देखने, अब मानो उसको कैंसर की बीमारी है, तो उसके सामने दो बोल मीठे बोलना तो दूर, उससे प्यार से बात करना तो दूर, उसमें शक्ति भरना तो दूर। और ही हम उसके सामने क्या बोलते कि पता है फलाने व्यक्ति को भी ये बीमारी थी और वो 4 महीने में ही चला गया। माना क्या मैसेज दे रहे हम उसको कि भैया तुम भी 4 महीने में चले जाओगे। या दूसरा एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट का कि स्टूडेंट एग्जामिनेशन में अपियर होने के पहले ही क्या सोचने लगता है? क्या नेगेटिव विचार कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं सोचते ना? या ऐसा ना हो कि पेपर टफ आ जाए, या ऐसा ना हो कि पेपर को देखते ही मैं सब कुछ भूल जाऊं। और सचमुच ऐसे ही होता है कि जैसे ही प्रश्न पत्र स्टूडेंट के हाथ में आता है वो पेपर को देखते ही सब कुछ भूल जाता है। तो क्यों होता है ये सब? हमारे नकारात्मक विचारों के कारण। और इसकी जगह यदि किसी भी कर्म को करने के पहले हम ये सकारात्मक चिंतन करें कि मैं भगवान का बच्चा हूं और प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, तो आप देखिए कि श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्प की शक्ति से सचमुच आपके हर कर्म सफल होंगे। आप प्रयोग करके देखें। देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई देते हैं ना, तो हम भी आप सबके लिए आज एक आध्यात्मिक इंजेक्शन लाए हैं, स्पिरिचुअल इंजेक्शन। वो क्या स्पिरिचुअल इंजेक्शन है आपको हम बताते हैं। हाँ, आप जब जाएंगे तो बाहर आपको मिलेगा वो गेट पर हम आपको बताते हैं और इसको लेने की विधि क्या है ये भी बताएंगे। रोज आपको ऐसे हम स्पिरिचुअल इंजेक्शन होमवर्क देते जाएंगे। तो आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप इसको करिएगा और फिर देखिएगा कि हर कर्म के पहले अगर आप इस संकल्प को करेंगे तो सचमुच परमात्मा की तरफ से आपको ये वरदान मिल जाएगा। कैसे इसको करना, कितनी बार इस दवाई को लेना, ये आपको बाद में बताते। पर क्यों होगा ये सब, पर करना कैसे? निश्चय के साथ। कोई भी कमजोर का संकल्प अपने मन में ले लाना, ये नहीं सोचना कि आज तक तो इतना कर लिया, अभी तक तो सफलता मिली नहीं, आज कौन सा तीर मार लेंगे, नहीं। पूरा निश्चय कि हुई मैं भगवान का बच्चा। और जैसे बच्चों को कुछ चीजें जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देते ना, तो ये आप अनुभव करें कि मैं भगवान का बच्चा हूं, तो परमात्मा ने आज मुझे सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दी है। अपने आप को बैठा अनुभव करें और ऊपर ये परमात्मा के वरदानों का हाथ है और परमात्मा से रंग बिरंगी शक्तियों की बरसात हम पर हो रही है। बाहर हम लगाएंगे इसको, आप देखिएगा कैसे करना। आप चाहे तो ट्रांसपेरेंसी पे देख लें। क्या अनुभव करें कि मैं भगवान का बच्चा हूं और प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर देखिए, हम आपको इसका मनोवैज्ञानिक कारण समझाते कि क्यों सफलता मिलेगी। अब आप इसको ध्यान से समझें कि आप सभी को पता होगा कि मन दो प्रकार के होते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, पूरे 11 दिन का इम्पोर्टेंट थीम है ये। दो प्रकार के मन होते हैं, एक बाहरी मन और दूसरा अंतर मन, जिसको हम कहते कि बाहरी मन माना कॉन्शियस माइंड, बाहरी मन, और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड माना अंतर मन। और कहते हैं कि 90% शक्ति अंतर मन के पास होती है, सब कॉन्शियस माइंड के पास, और केवल 10% शक्ति बाहरी मन के पास होती है। तो आजकल साइंस के जितने भी बड़े बड़े चमत्कार होते हैं वो अंतर मन की शक्ति से होते हैं। और मनोविज्ञान में अंतर मन को, सबकॉन्शियस माइंड को बुद्धू कहते हैं, अनएजुकेटेड लेबर। अर्थात कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के पास सोचने समझने की, तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं होती। आप जैसा इसको बोलते वो बिना किसी तर्क वितर्क के अपने अंदर भर लेता है और फिर वैसे ही हो जाता है। जैसे मान लो रोज कोई सोचे कि तू कमजोर है, कोई तेरा साथ नहीं देता, जहां तू जाता वही हार जाता, तो सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही भर, क्या बिल्कुल तू तो कमजोर ही है, जहां तू जाता वही हार जाता, और फिर वैसे ही हो जाता है। देखिए सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता, इस पर हम आपको एक दो बात सुनाएं कि देखिए, किसी दिन आपको सवेरे जल्दी उठना होता है तो हम अलार्म लगा के सोते हैं कि भाई इतने बजे मुझे उठना है। पर आपने देखा होगा कि अलार्म बजने के 2-3 मिनट पहले ही हम उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रात को ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम दे दिया कि भाई मुझे इतने बजे उठा देना, तो उसने उठा दिया। या कहने का क्या भाव कि जैसा हम सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं वो वैसा का वैसे ही अपने अंदर भर लेता है और फिर वैसे ही हो भी जाता है। आज आप देखिए कि शबरी की कुटिया में राम क्यों आए? क्या उसने कोई टेलीफोन किया? वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम दे दिया कि मेरी कुटिया में राम आना चाहिए, और इतना पक्का प्रोग्राम दे दिया कि उसको हर आहट पे लगता था कि मेरे प्रभु आ गए और उसकी कुटिया में राम आ गए। या आपने नरसिंह मेहता का उदाहरण सुना हो, कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था, पर उसने भगवान को कहा कि मारी उंडी स्वीकारो महाराज रे, और उसका चेक पास हो गया। तो क्या कहने का भाव कि जो सबकॉन्शियस माइंड को हम बोलते हैं वो वैसा का वैसे ही अपने अंदर भर लेता है और फिर वैसे ही हो जाता है। तो आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को आज प्रोग्राम दे दीजिए, भर दीजिए अपने मन में कि मैं हुई भगवान का बच्चा और प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम देने से सचमुच में हर कदम पर आपको सफलता मिलने लगेगी। और कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से ज्यादा चित्रों की भाषा समझता है, इसलिए आपको चित्र बताया कि चित्र सहित आज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार दें। हम आपको लास्ट में प्रैक्टिस भी कराएंगे, पर यह आपका आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन है। कितनी बार करना ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप करेंगे तो हर कदम पे आपको सफलता मिलेगी। निरंतर आप चलते फिरते आज इसी स्मृति में रहें कि प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर ही है। निरंतर करेंगे सभी इस अभ्यास को, करेंगे तो हाथ उठाएं, ठीक है? अभी हाथ उठा रहे, कलम पूछेंगे कितनी बार इस स्पिरिचुअल इंजेक्शन को लेना, वो लास्ट में अभी बताएंगे, क्योंकि डोज तो बताना पड़ेगा कि कितनी बार करना। अब और आगे बढ़े, नेक्स्ट टेक्निक एंड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन का सुनहरा सिद्धांत। अब हम आपको तनाव मुक्ति के लिए एक महामंत्र बताते हैं। इस महामंत्र को हम एक कहानी के द्वारा बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा महामंत्र। कि एक बार एक सम्राट की भेंट एक फकीर के साथ हो गई और सम्राट ने फकीर को कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूं, पर आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि मुझे अपने जीवन में कभी भी दुख का अनुभव ना हो। तो फकीर ने सम्राट को एक अंगूठी दी और कहा कि जब भी कभी कठिन परिस्थिति आए या दुख के क्षण आए तो इस अंगूठी में जड़े रत्न को हटाकर अंदर लिखे मंत्र को पढ़ लेना। तो सम्राट ने वो अंगूठी रख ली। अब क्या हुआ, कुछ वर्ष बीत गए और एक दिन अचानक सम्राट के राज्य पर हमला हुआ और उससे सम्राट का मनोबल एकदम टूट गया। वो पराजित हो गया और वहां से भाग निकला। फिर अचानक सम्राट को वो फकीर के द्वारा दी हुई अंगूठी याद आई। सम्राट ने उस अंगूठी को निकाला, उसमें जड़े रत्न को हटाया और उसमें से एक कागज का टुकड़ा बाहर निकला। सम्राट ने उस कागज को खोला जिस पर लिखा था, यह भी गुजर जाएगा, यह समय भी गुजर जाएगा, यह समय भी बीत जाएगा। तो बस इतना पढ़ते ही सम्राट के भीतर एक चेतना जागृत हुई और उससे उसका मनोबल लौट आया और वापस उसने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। तो आप भी अपने जीवन में याद रखें कि कभी भी कोई बड़ा रोग हो, कठिन परिस्थिति हो, दुख के क्षण हो, आप क्या याद रखें? कौन सा मंत्र? कि यह समय भी गुजर जाएगा, यह समय भी बीत जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि समय परिवर्तनशील होता है, सब दिन होतना एक समान। जो परिस्थिति आपके जीवन में आज आई है वो कल नहीं थी और आने वाले कल में भी नहीं रहेगी। देखिए, जापानीज लोग परिस्थितियों के बारे में बहुत प्रसिद्ध हैं। बताते हैं कि जापान के अंदर अक्सर करके भूकंप आया करते, सुना होगा आपने, और भूकंप के बाद वो सारा शहर नेस्तनाबूद हो जाता है। पर फिर भी जापानी लोग हिम्मत नहीं हारते, हर बार वो नया शहर बसाते हैं और वो नया शहर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। और हर बार नया शहर बसाने के बाद जापानी लोग क्या कहते हैं कि कह दो तूफानों से जाकर कि हमने अपना आशियां बना लिया है, कह दो तूफानों से जाकर कि हमने अपना आशियां बना लिया है। तो देखिए, जापानी लोगों के आगे भी परिस्थिति आती है और गुजर जाती है, पर वो अपना हौसला नहीं खोते। तो आप भी अपना सब कुछ खो जाने के बाद भी अपना हौसला नहीं खोना, अपना सब कुछ खो जाने के बाद भी अपना हौसला नहीं खोना। क्योंकि याद रखें, कैसा भी बड़ा दुख हो, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसा भी बड़ा रोग हो, यह समय भी गुजर जाएगा। तो क्या हुआ महामंत्र? याद रहेगा सभी को, इसलिए कहानी के द्वारा सुनाया कि हमेशा आपको याद रहे। अब हम और आगे के सिद्धांतों पर चलते। एक टेक्निक और आपको बताऊं, नेक्स्ट टेक्निक। अब जो हम आपको बात बता रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, इससे हमारे संबंधों में मधुरता आती है, बिगड़े हुए संबंध सुधर जाते हैं। तो नेक्स्ट टेक्निक एंड प्रिंसिपल, तनाव मुक्त जीवन का सुनहरा सिद्धांत, वेल विशेस, शुभ भावनाएं। अब देखिए इसका चमत्कारिक परिणाम, जरा झांक कर देखिए कि आपने अपने मन में क्या क्या भर रखा है, क्या क्या भर रखा है। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति नफरत और किसी के प्रति बदले की भावना। मान लीजिए, उदाहरण, आप 100 लोगों को जानते हैं, 100 से आपका संपर्क है, तो सबके प्रति हम अलग अलग भावनाएं भर के रखते हैं। किसी के लिए सोच लेते कि ये बहुत चालाक है, किसी के लिए सोच लेते कि ये कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता। तो जैसी भावनाएं हमने अपने मन में दूसरों के प्रति भर रखी है, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों से प्राप्त होगा। यदि आप अपने मन रूपी बगीचे में सबके प्रति शुभ भावनाएं भर देंगे तो इस संसार में कोई भी आपका शत्रु नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि भावना बदलते ही आपका संसार बदल जाएगा। आप किसी से अच्छे संबंध चाहते हैं, अच्छा व्यवहार चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को शुभ बना दें। शुभ भावना अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना। देखिए शुभ भावना क्या कमाल कर सकती है, इस पर हम आपको एक कहानी सुना देते हैं। कहानी से बात हमेशा याद रहती है कि शुभ भावना की शक्ति से क्या होता है। कि एक बार दक्षिण भारत की रामायण में एक छोटा सा प्रसंग आता है शुभ भावना पर। बताते हैं कि रामेश्वरम में श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं और उसके लिए रावण को निमंत्रण भेजते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि रावण ब्राह्मण होते हैं ना। तो सबसे पहले हनुमान जी जाते हैं, रावण को निमंत्रण देते हैं और कहते हैं, ए रावण, तुम्हें श्री राम बुला रहे हैं। तो रावण मना कर देता है, बोले कह दो नहीं आना। तो हनुमान जी आते हैं, रामचंद्र जी को कहते कि भाई रावण ने तो मना कर दिया। तो रामचंद्र जी कहते कि तुम शत्रु को बुलाने गए थे या मित्र को। फिर लक्ष्मण जी को भेजते और रामचंद्र जी कहते कि हे लक्ष्मण, रावण को जाकर ऐसा कहना कि हे आचार्य कुलभूषण, हे लंकापति महाराज, आपको वनवासी राम पूजा अर्चना के लिए बुला रहे हैं। तो जाते लक्ष्मण जी ऐसे कहते, हे आचार्य कुलभूषण, हे लंकापति महाराज, आपको वनवासी राम पूजा अर्चना के लिए बुला रहे हैं। तो रावण तुरंत आ जाता है, पूजा अर्चना करता। फिर रामचंद्र जी पूछते कि भाई आप दक्षिणा क्या लोगे, क्योंकि देते हैं ना पूजा के बाद। पर रावण को तो अपना अहंकार होता है, तो वो एक जोरदार टॉन्ट मारता है। वो कहता कि जिसकी पत्नी अपने पास नहीं, जिसका राज्य अपने पास नहीं, वो क्या मुझे दक्षिणा देगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी रामचंद्र जी तो विनम्र स्वभाव के होते हैं, तो वो बोले नहीं कुछ तो आप लीजिए। तो देखिए रावण क्या कहता कि श्री राम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि कहीं मैं आपकी शुभ भावनाओं के वशीभूत ना हो जाऊं। क्या कहता वो कि कहीं मैं आपकी शुभ भावनाओं के वशीभूत ना हो जाऊं। तो देखिए इतना शक्तिशाली यंत्र है ये। तो आप सभी यहां बैठे हैं तो आप सबको देखकर एक विचार मन में आता है कि देखिए आज संसार के अंदर हम कई प्रकार के दिवस मनाते हैं। मनाते ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो क्यों ना आज का दिन हम सब मिलकर शुभ भावनाओं का दिवस मनाएं। क्या विचार है आप सबका? जो मनाना चाहते हैं हाथ उठा करें। ये तो सभी करते, बहुत अच्छा। शुभ भावनाओं का दिवस माना कि आज जो भी आपको मिले उसके प्रति आप कैसी भावना रखना, कि ये भी उस परमात्मा की ही संतान है और इसका भी कल्याण हो। ये नहीं कि ऐसा है वैसा है, नहीं। आज आप प्रयोग करें और फिर उसका चमत्कार देखें कि भावना बदलते ही सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा। प्रयोग करें आप 7 दिन कम से कम, कि अगर कोई आपको आपके काम में सहयोग नहीं देता, किसी से आपके संबंध बिगड़े हैं, कोई बार बार आपको विघ्न डालता है, तो आप उस व्यक्ति के प्रति अपनी भावना शुभ बना दें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भावना में ही गड़बड़ी है। और वैसे भी देखिए कि बुरी भावना का नुकसान और किसी को नहीं होता, किसको होता है? स्वयं को ही होता है। तो आज ये प्रयोग करें, हम सब मिलकर शुभ भावनाओं का दिवस मनाएं, अर्थात कि जो भी आपको मिले आप ये भावना उसके प्रति रखें कि ये भी उस परमात्मा की ही संतान है और इसका भी कल्याण हो, जिसको कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका कल्याण हो। पर ऐसा नहीं करना कि 9 लोग जो आए उनके प्रति तो शुभ भावना, और 10वां जो मिला उसको ही तो हम ढूंढ रहे थे इतने समय से। ऐसा नहीं, जो भी आपको मिले, ठीक है? तो अब हम आपको आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन, आज का होमवर्क फिर रिवाइज करा दें कि स्पिरिचुअल इंजेक्शन लेने की विधि क्या है। देखिए, आप होमवर्क करेंगे तभी परिवर्तन आएगा। तो उसकी विधि क्या है वो बताने के पहले ये आपको बता दें कि कल इस शिविर के अंदर हम एक बहुत बढ़िया महोत्सव मनाएंगे। कल शिविर के अंदर हम खुशियों का महोत्सव मनाएंगे। अब वो क्या चीज है वो कल ही आप देखिएगा। कल हम आपको खुश रहने की छोटी छोटी टेबलेट्स देंगे, ठीक है ना, आध्यात्मिक टेबलेट्स। तो कल शिविर के अंदर खुशियों का महोत्सव मनाया जाएगा। पर अब हम आपको बता दें कि आज का होमवर्क कैसे करना, कि आज सारा दिन चलते फिरते आप यही स्मृति रखें। हम प्रैक्टिकल मेडिटेशन भी आपको कराएंगे। क्या स्मृति? कि मैं हूं भगवान का बच्चा। हाँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को चित्र सहित प्रोग्राम दे दें कि मैं हुई भगवान का बच्चा और प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है और परमात्मा से रंग बिरंगी शक्तियां मुझ पर बरस रही हैं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कितनी बार करेंगे इसको? डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई देते हैं, पर कितनी बार बताइए आप, कितनी बार करेंगे इसको? कितनी बार? इसको हर एक घंटे में एक बार, ठीक है? वैसे तो सारा दिन आप अनुभव करें कि मैं प्रभु के वरदानों के नीचे ही हूं, पर एक घंटे में एक बार आप बैठ जाएं 2 मिनट के लिए और इसकी अनुभूति करें। कैसे अनुभव करना वो हम प्रैक्टिकल आपको बताते। और करने के पहले कोई भी कमजोर संकल्प हो तो यही छोड़ के जाना। बिल्कुल निश्चय से करना कि हुई मैं भगवान का बच्चा और परमात्मा ने मुझे आज वरदान दे दिया कि जाओ बच्चे, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब आप इसको निश्चय से करेंगे तो आप देखेंगे कि इस वरदान की शक्ति से कैसी भी असफलता वाली परिस्थिति सफलता में बदल जाएगी और सचमुच परमात्मा की तरफ से आपको वरदान मिल जाएगा। तो ये स्पिरिचुअल इंजेक्शन जब आप जाएंगे तो आप सभी को मिलेगा, और ये चित्र भी हम लगा देंगे ताकि आप इसको नजदीक से देख सकें। तो अभी सभी अपनी आंखें बंद कर लें, हम इस समान की स्पिरिचुअल इंजेक्शन की अनुभूति की तरफ चलते हैं कि कैसे इसको आपको करना है। सर्वप्रथम रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं, माइंड बॉडी दोनों रिलैक्स कंफर्टेबल। अपने सारे बोझ उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के हवाले कर दें। रिलैक्स, मैंने मेरी जीवन डोर प्रभु के हवाले कर दी। अब वही मेरी जीवन रूपी नाव का खेवैया है। मैं एकदम निश्चिंत हो गया, एकदम निश्चिंत, हल्का। अनुभव करें कि जिस तरह आकाश में सितारे चमकते हैं, ठीक वैसा ही सितारा मेरे मस्तक पर चमक रहा है। अपने मस्तक पर चमकता सितारा अनुभव करें। ये सितारा सफलता का सितारा है। मैं भगवान का बच्चा हूं। अनुभव करें कि परमात्मा मेरे ऊपर रंग बिरंगी शक्तियों की बरसात कर रहे हैं। आहा, परमात्मा की शक्तियां मुझ पर बरस रही है। अपार शक्तियों की बरसात हो रही है। मैं अपने अंदर शक्तियों को भर रही हूं। आहा, अब मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मैं प्रभु कृपा के पात्र बन गया। प्रभु की कृपा मुझ पर बरस रही है। स्वयं परमात्मा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक दे रहे हैं। अपने मस्तक पर विजय का तिलक चमकता देखें। मैं भगवान का बच्चा हूं। प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सक्सेस इज माय बर्थ राइट। सब तरफ से सफलता मेरी ही है। वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, कभी स्वप्न में भी नहीं था कि स्वयं परमात्मा के द्वारा मुझे सफलता का वरदान मिल जाएगा। पर आज मेरे भाग्य का सितारा चमक गया। मैं निरंतर प्रभु के वरदानों के नीचे हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भरते चले परमात्मा से शक्तियां।